어디야? 안디. 아주 4, 5, 20, 20 का शुभ दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। आज का मेरा विषय है सत्संगति मुद मंगल मूला। इस विषय को लेकर मैं कुछ अपने जीवन के विषय में ही बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व कि मैं टॉपिक को शुरू हूँ, मैं आपको एक और दो एक और ले जाती हूँ। मल्याचल गंधेन त्रिधनम चंदनायते तथा सज्जन संगेन न दुर्जना सजनायते, अर्थात मल्याचल की सुगंध से ईंधन भी जिस प्रकार चंदन बन जाता है, वैसे ही सज्जनों के संसर्ग से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। आइए अब मैं आपको बहुत पुराने जमाने की ले जाती हूँ। मैं एक वैष्णव और संपन्न परिवार से हूँ। भगवत प्राप्ति के लिए मैं सदैव व्याकुल रहती थी और भगवत प्राप्ति के लिए मैं प्रायः साधु संग किया करती थी। ध्यान पूजा तथा वेद उपनिषद तथा गीता का अध्ययन भी करती थी। आंतरिक भाव को गुप्त रखते हुए मेरा हृदय भगवान के लिए आतुर रहता और कभी कभी मैं रो भी पड़ती थी। कहते हैं अपने भक्त की भक्ति को देखकर भगवान भी जगित हो उठते हैं। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं प्रायः परमानंद की खोज में रहती थी और 1968 में मैं मानसी जी के कहने से सर्वांगी विकास संघ में गई। वहां भी मैंने कुछ नियमों का पालन करते हुए एक वर्ष व्यतीत किया, लेकिन आत्मा की शांति मुझे वहां नहीं मिली और मेरा मन सदैव भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहता। और मैं चाहती थी कि मुझे ऐसे भगवान के दर्शन हो जिनके दर्शनों से मैं खिल उठूं और अपने स्वयं हाथों से उनको प्रसाद खिलाऊं। ये सब व्याकुलता हृदय में छुपाकर मैं पाठशाला में जाती और बच्चों को छात्र छात्राओं को पढ़ाती थी, लेकिन प्रातः साय मेरी पुकार भगवान के दर्शनों के लिए बराबर बनी रहती थी। कहते हैं सिर कटाए प्रभु मिले तो भी सस्ता जान। फरवरी 1970 की बात है, रविवार के दिन ब्यासा मोड़ पर मुझे बाबा के दर्शन हुए। बाबा नंगी धरती पर नंगे बदन अवधूत अवस्था में थे। बिमला शर्मा ने बाबा को प्रणाम किया, मेरे भी दोनों हाथ जुड़ गए। बिमला ने कहा बाबा जी चलो हमारे घर चलो, क्योंकि जब ये बाबा जी अखाड़ा बाजार में रहते थे तो बिमला उनके पास आया जाया करती थी, क्योंकि उसका घर वहां नजदीक ही था। बिमला के पश्चात मैंने कहा महाराज जी हमारे घर पर भी आइए तो प्रत्युत्तर मिला आऊंगा, आपके घर बाबा अवश्य आएगा और वीरवार को आएगा। घर पहुंचने पर मैंने अपने माताजी तथा भाइयों के वो बाबा के आगमन की शुभ सूचना दी। वे सभी बहुत प्रसन्न हुए और उस इसमें मुझे 2 दिन पूर्व जो स्वप्न आया था या ध्यान में जो कुछ देखा था वो स्मरण हो आया। शुक्रवार का दिन था, शिवरात्रि थी उस दिन। मैं स्वप्न में अपने माता जी के साथ एक मंदिर में गई थी और वहां पर पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे मैंने इन्हीं बाबा को देखा था और जैसे मैंने बाबा के चरण स्पर्श किए थे उसी क्षण आकाशवाणी हुई थी कि इन्हीं महात्मा से तेरा कल्याण होगा, ये कलयुग के एक बड़े महात्मा है। और प्रातः उठकर मैंने ये अपने अध्यक्ष रामलाल जी को बताया कि मुझे आज सपने में बाबा जी के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा 3 दिन 3 महीने या 3 वर्ष में इसका फल सामने आ जाएगा। और ठीक ऐसे ही हुआ। शुक्रवार व्यतीत हुआ, शनिवार व्यतीत हुआ और रविवार को बाबा के दर्शन मुझे व्यासा मोड में हो गए। अब महात्मा जी को मैंने कहा, स्वप्न नहीं, अभी स्वप्न ही चल रहा है, कि महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान के दर्शन करूं। तो उन्होंने कहा पीछे हटो, ये रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन मैंने आग्रह किया कि आकाशवाणी में जो कुछ मैंने सुना है, तो आप तो एक बहुत बड़े महात्मा या भगवान ही हैं। तो उन्होंने खुश होकर मेरे हाथ में एक बहुत बड़े लाल रंग का सहस कमल दल कमल मुझे दे दिया। और स्वप्न टूटने पर मुझे ये स्वप्न नहीं लगा और मैं इसे आज भी वैसे ही मानती हूँ, वैसे ही मुझे प्रतीत होता है और मैं उसमें बहुत अधिक आनंद लेती हूँ। और उसमें भी मैंने बहुत आनंद लिया। और दूसरी बार को जब बाबा जी हमारे घर पर आए तो मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। उसमें मैं रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक पढ़ रही थी। माता जी ने प्रातः ही कह दिया था कि आज वीरवार है, आज बाबा जी आएंगे, स्कूल में छुट्टी ले लो और जितने भी सत्संगी बहन भाई आएंगे सभी को भोजन कराना है। और इसलिए मैंने भी छुट्टी ले ली और माता जी ने पूरी तैयारियां की। अड़ोस पड़ोस में भी महिलाओं को बुलाया। सब के आनंद का ठिकाना नहीं था क्योंकि बाबा जी तो किसी के घर जाते नहीं थे। सभी महिलाएं और बच्चे भी बहुत आतुरता से आंगन में बैठे हुए थे कि अब बाबा जी आते। लेकिन बाबा जी सुबह को से शाम तक नहीं आए। सबकी नजरें मुख्य द्वार की ओर थी। लेकिन 3 बजे बाबा जी बड़े बड़े पग भरते आंगन की ओर आते दिखाई दिए। उनके पीछे कुछ भक्त जन भी थे। जब बाबा के सत्कार के लिए सब आगे बढ़े तो मैं भी पुस्तक छोड़कर आंगन में तुलसी के चूते के पास आई तो बाबा साष्टांग प्रणाम करने के लिए मेरे चरणों में एकाएक गिर पड़े। सब हैरान थे, मुझे भी बड़ी लाज भी आई और मैं हैरान भी थी कि बाबा को हो क्या गया है, क्या कर रहे हैं, आस पास अतः के लोग क्या कहेंगे। फिर दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर बाबा स्तुति करने लगे। अब धीरे धीरे उन्हें घर के भीतर ले जाया गया। सामने मेज पर श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक थी। बाबा ने पुस्तक मांगी और श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करते ही उन्हें समाधि लग गई। उनके भक्तों ने प्रथम किया कि वह समाधि अवस्था से सामान्य अवस्था में आए। अब भक्तों को प्रसाद बांटा गया। भक्त लोग अपने अपने घर वापस चले गए पर बाबा उठे और मेरी पूजा के मंदिर में जा बैठे। 5 बज गए। उन दिनों में बाल गोपाल मतलब छोटे छोटे बालक बालिकाओं को सत्संग निभाया करती थी। स्नेह हो गया था इसलिए मैं बच्चों को सत्संग कराने के लिए वहां से चली गई। सायंकाल जब 7 बजे आई तो माता जी ने कहा देखो बाबा जी आपके मंदिर में चुपचाप धरती ही सो गए हैं और अब रात हो रही है, मंदिर में आरती करनी है, जोत जलानी है, बाबा जी को कैसे उठाया जाए। मैंने अंदर देखा कि वह बाबा कैसे सोए हैं। जहाँ मैंने बाल रूप श्याम जी की मूर्ति स्थापित की थी वही उनका सिर था। और अब क्या किया जाए। लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे आगे बढ़कर ज्योति जगाई, आरती की। आरती का शब्द सुनकर बाबा उठकर बैठ गए। माँ आप मुझे चना मत दो, मैं कुछ ना समझी। बाबा ने फिर कहा माँ चना मत दो, मैं चुप रही। फिर उन्होंने माता जी से कहा माता जी जल ले आओ और एक प्रात भी। आज्ञा अनुसार एक भक्त जल और प्रात ले आया, लेकिन मैंने कहा ये कैसे हुआ, महात्मा जी को मैं अपने चरणों का जल नहीं दे सकती। पर बाबा के आग्रह पूर्वक ये कहने पर कि बाबा यहीं से ये छोड़ देगा, मुझे अपने चरण आगे बढ़ाने पड़े। उसमें मुझे एक भगवान श्री कृष्ण और राधा की कथा याद आ गई। इससे पहले मैंने ये कथा पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी। ये कथा इस प्रकार है कि राधा का प्रेम श्री कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम था जो शायद आज तक किसी आत्मा ने इतना प्यार नहीं किया होगा। लेकिन जो दूसरी रानियां थी रुक्मणी आदि, वो कहती थी कृष्ण आप राधा से इतना प्रेम क्यों करते हैं, राधा को इतना क्यों याद करते हैं। तो उन्होंने कई बार कहा कि राधा का प्रेम तुम्हारे से कुछ बिलग ही है, अलग ही है, लेकिन वो मानती नहीं थी। एक दिन भगवान को ख्याल आया क्यों यहाँ आज इनके प्रेम की परीक्षा ली जाए। उन्होंने कहा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं पाऊंगा, क्यों, पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। सारे वैद्य बुलाए गए लेकिन पेट की दर्द नहीं हटी, अब क्या होगा। तो श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मिणी भामा सत्या भामा, जितनी भी महारानियां थी सबको कहा कि मेरे पेट की दर्द तो तभी हटेगी जब कोई आप में से अपने चरणों का जल धोकर मुझे पिलाएगी। तो सभी आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगी और कहने लगी राम राम ये कैसे होगा, हम कैसे पिलाए अपने चरणों का जल श्री कृष्ण को या अपने पति को। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जाओ, अपने सेवक को कहते हैं जाओ राधा के पास और उसके चरणों का चरणामृत ले आओ। गए और राधा जी को कहा कि बात ऐसी है श्री कृष्ण के पेट में कई दिनों से बहुत दर्द है, उनको आपके चरणों का चरणामृत चाहिए। ये वचन सुनते ही राधा जी ने ना आप देखा ना ताप, उन्होंने अपने चरण धोए और सेवक के हाथ में चरणामृत भेज दिया। जैसे श्री कृष्ण भगवान चरणामृत पीते हैं वैसे वो ठीक हो जाते हैं। ये कथा याद आते ही मैंने कहा जब महापुरुषों की जो मांग है वो पूरी कर दी जाए भले ही मुझे नरक में जाना पड़े कोई बात नहीं। राधा जी ने भी तो यही कहा था कि भले मैं नरक में जाऊं मेरे कृष्ण की पीड़ा दूर होनी चाहिए। ये कथा याद आते ही मैंने भी वैसे ही अपने चरण बढ़ाए और बाबा जी ने चरण धोकर और पूरी प्रात पी कर तृप्त हुए और चले गए। भला मैं उसमें क्या जानती थी कि इसका अर्थ क्या है। बाबा जी फिर दूसरे दिन आ गए, इसी प्रकार धीरे धीरे चरणामृत बुआते पीते और चले जाते। और मैं उन दिनों जो सत्संग करवाती थी तो लगभग बाजार में से कोई 50-60 बच्चे लड़के लड़कियां बाल गोपाल इकट्ठे होते थे, तो कभी कभी बाबा भी उन बच्चों में यहाँ बैठते थे और मैं जो कुछ कथा कहानियां सुनाती थी सत्संग करवाती थी वो बड़े ध्यान से सुनते थे और काफी ज्यादा मिठाई भी लाते थे बच्चों को बांटने के लिए। लेकिन तभी भी मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया। एक दिन ऐसा हुआ कि सर्वांगीण विकास संघ वालों ने कहा कि दिल्ली में हिंदू महासभा में सम्मेलन है, 3-4 दिन का सम्मेलन है, और मैं भी उनके साथ दिल्ली सम्मेलन में चली गई। हिंदू महासभा में सम्मेलन था, 3-4 दिन सम्मेलन हुआ और अंतिम दिन अचानक क्या हुआ कि अचानक उनका एक सेवक आया और कहने लगा स्वामी जी को, स्वामी जी गीता बहन जी कौन है, उनके भाई उनको लेने आए हैं। मैं हैरान हो गई कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ वो भैया कहाँ से आ गए। मैंने बाहर जाकर देखा तो छोटा भाई विजय और उसके दोस्त विश्वनाथ दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि स्वामी जी बाबा जी और माता जी भी हमारे साथ आए हैं, लेकिन वो पहाड़गंज में किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हैं और आपको बुला रही है। अब क्या था, मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि ठीक है, मैं जा करके अभी आती हूँ। और मैं उनके साथ से दिल्ली पहाड़गंज में आ गई। बाबा जी ने वहाँ से वृंदावन जाने का कार्यक्रम बना लिया। हम ट्रेन द्वारा वृंदावन पहुंचे। बाबा ने स्वयं नंगे पैर चलकर वृंदावन की महिमा हमें दिखाई और वहाँ एक सप्ताह रहकर बड़े आनंद से मुझे भगवत भक्ति तथा दिव्य आनंद की प्राप्ति करने के लिए बहुत समय दिया। इस प्रकार वृंदावन से जब हम वापस आए तो बाबा जी ने एक दिन कहा कि आप अब स्वतंत्र हो जाओ, किसी के अंतर्गत पराधीन होकर के सत्संग नहीं करना है, आप अपना ही सत्संग चलाओ। लेकिन मैं बात नहीं समझ पाई, लेकिन पर बाबा जी ने इस पर बार बार जोर दिया और अंत में उन्होंने एक और सत्संग चलाया जिसका नाम उन्होंने शारदा माँ सत्संग रखा। और एक दिन फिर बाबा ने अपने भक्त विपद सूत के साथ एक संदेश भेजा कि बाबा जी ने समाधि लेने का प्रण कर लिया है। वो कहते हैं अगर माँ नहीं आएगी तो बाबा शरीर छोड़ देगा। फिर मेरे मन में दया आई, भाव आया कि चलो क्या बात है, देखते हैं बाबा को क्या हुआ है। मैं अपने भाई को लेके रामलाल जी को लेकर बाबा जी के पास पहुंची तो बाबा जी ने फिर वही बात दोहराई कि अब शरीर का क्या फायदा है, मुझे तो अब समाधि लेनी है, नहीं तो माँ आप उस मंदिर को चलाओ संभालो। फिर मुझे दे आई, मैंने कहा अच्छा ठीक है, स्वामी जी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं संग का सत्संग न करके अपना एक इंडिपेंडेंट ही शारदा माँ सेवा संघ चलाऊं, तो मैंने वैसा ही किया। इस प्रकार चलते चलते आखिर 1974 का दिन आ गया और श्री महाराज जी के सत्संग से मुझे वही सब कुछ प्राप्त हुआ जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि मल्या जल की सुगंध से ईंधन भी चंदन बन जाता है और सज्जनों के संसर्ग से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। तो श्री महाराज जी के संसर्ग से, उनकी कृपा से मैं आज आप सबके सामने श्री माँ देवी तीर्थ की माँ के रूप में हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना ये संस्मरण समाप्त करती हूँ। जय प्रभु गीता माँ।